नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
We have about 80 companies.
हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।